1939 की बात है, 1939। गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी पहली बार अपने साथ अपने शिष्य भक्त बनासीदास जी को तब के वास्ते साथ ले जाना चाहते, या उन्होंने उनको साथ जाने की कोशिश की। महाराज जी का अपना एक नियम था कि गर्मियों के मौसम में वो एक गहन तप के वास्ते जाया करते थे, ऐसे स्थान पर जहां दूर दूर तक आबादी भी नहीं हुआ। इस बार जब पहली बार भगत जी के साथ जा रहे थे तो वो इलाका था कश्मीर का, वहां पर एक निखेत गांव है जो अब पाकिस्तान में चला गया। वहां महाराज जी के शिष्य रहते थे राम देवता। उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं आपको एक उपयुक्त स्थान तब के लिए दिलवा दूंगा। महाराज जी भगत जी के साथ उनके गांव चले गए। वहां से फिर आगे खोजते खोजते निखेत पर्वत पर पहुंचे। वहां भी देखा महाराज जी ने यहाँ पर जंगल की कटाई हो रही है, खटखट की आवाज आती है, इसलिए वो भी उनको स्थान तप के अनुकूल नहीं लगा। ये जून का महीना, तो महाराज जी उस निखेत पर्वत की चोटी पर गए। वहां कुछ फ्लैट एरिया था थोड़ा सा, तो वो स्थान महाराज जी ने तप के वास्ते पसंद किया। लेकिन वहां की कंडीशन ऐसी थी, इतना लो टेम्परेचर रहता था कि दिन के समय भी बिना आग जलाए भाव को व्यक्ति रह नहीं सकते। राम देवता मल के जो वर्कर्स थे उन्होंने उनको कहा कि झोपड़ी ही दिया करो, उस स्थान पर भी झोपड़ी दिया की। झोपड़ी में भी जो गेट था, गेट के नाम पर पेड़ के दो तने काटकर उसको रख दिए गए, वो गेट तैयार हो गया। और वो प्लेस इतना कठिन था कि भगत जी को वहां से 1.5 मील नीचे पहाड़ी उतरकर झरना मिलता था, वहां वो खुद स्नान करते थे। और महाराज जी के लिए एक बाल्टी पानी इतना ठंडा होता था पानी, को कपड़े में लपेट कर उनको महाराज जी को स्नान कराने की ऊपर चोटी पर लाना। फिर दूसरी तरफ जाते थे, अपने रोटी सेकते थे, जहां भी अरेंजमेंट था लेबर के खाने का वहां पर जाकर, और महाराज जी के लिए चाय बना पिला। चाय क्या होती थी उनकी, 1.5 पाव पानी और 1.5 पाव गाय का दूध, वो चाय उनका महाराज जी का दिन भर का आहार होता था। उसके अलावा वो ना पानी पीते थे ना खाना खाते। तो फिर महाराज जी ने कहा, प्रेमी तुम अपना प्रोग्राम खुद निर्धारित कर लो, इनके किसी काम में दखल मत दे, जब जो कहा जाए केवल वही कर। तो भगत जी 2-4 दिन देखते रहे, महाराज जी हंसे में समाधि नहीं रहते, उनका काम था सूखी लकड़ियां बीन के लाना और आग कुटिया के अंदर हमेशा जला रहा। तो रात्रि को जब समाधि में महाराज जी होते थे उस समय वाणी निकलनी शुरू होती। तो जब 2-3 दिन बीत गए तो महाराज जी जब बैठे हुए थे समाधि में नहीं थे उस समय, तब भगत जी ने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, महाराज जी आपने जो ये संतों के दोहे याद कर रखे हैं, ये वाणी याद कर रखी है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मेरा मन करता है मैं इसको लिखूं। तो महाराज जी क्या कहते, वो भोले प्रेमी इन्होंने कुछ याद नहीं कर रखा है, ये स्वतः ही वाणी प्रभु कृपा से आ रही है, ये प्रभु ही जाने उनकी क्या लीला होने वाली है, ये जो आज के मनुष्य है उनके वास्ते ही आ रही है, और यहाँ भाषा का भी कोई बंधन नहीं, यदि जरूरत हो तो ये संस्कृत में भी आ सकती है, जरूरत हो तो ये अंग्रेजी में भी आ सकती है, भाषा का कोई यहां पे बंधन नहीं, लेकिन आगे चलकर यही भाषा देश की आम भाषा होगी, इसीलिए इसी भाषा में ये लोगों के वास्ते आ रही है। तब महाराज जी ने उनको परमिशन दे दी नोट करने की। तब भगत जी अपना रात को जब समाधि से वाणी बैठे होते थे, महाराज जी वाणी निकलती थी तो लिख लेते। अब एक तो लेते थे वो, लेकिन वाणी की जो गति होती थी, स्पीड होती थी, वो उनकी राइटिंग से मैच नहीं करती थी, तो वो मात्रा वगैरह लगाना छोड़ देते थे। फिर जब वो समाधि टूटती थी, मां जी कहते थे कि प्रेमियम सो जाओ, तब वो अपना लिहाफ होकर सो जाते थे। फिर सुबह जब स्नान मां जी को करा देते थे, फिर चाय पिला देते थे, उसके पश्चात उसका फिर करेक्शन हो जाता वाणी का, कि जो गलती रह गई तो मां जी सम्राट करा देते। तो एक दिन भगत जी ने कहा, महाराज जी जब वाणी निकलती है वो तो बिना सोचे समझे निकलती है, निकलती रहती है, कोई गलती उसमें नहीं होती, लेकिन मेरे कारण यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्ट कराने में आपको कई बार एक एक दो दो मिनट भी लग जाते हैं। तो मां कहते, प्रेमी ये सीधी ईश्वर की आवाज है, इसमें बुद्धि का कोई दखल नहीं है, वहां गलती की कोई संभावना होती ही नहीं, तेरी लापरवाही ही गलती कर जाती है। तो अब बताइए वो ऐसा स्थान, और एक दिन की तो बात है, पानी बरस रहा था, रात्रि का वक्त था, और भगत जी उस समय लिहाफ पड़कर सो रहे थे, तो तेज गर्जना हुई बाहर किसी हिंसक जानवर की, तो महाराज जी की समाधि टूटी। तो महाराज जी ने पूछा, बनारसी डर तो नहीं लग रहा? बोले, तो महाराज जी आप हैं तो डर कैसा, लेकिन आपके बिना तो यहाँ एक मिनट भी न रह सकता। तो कैसा भयानक स्थान, वो शेर होगा या चीता होगा, क्या ठंड वहां पर, लेकिन सतपुरुष का देखो कौन सा स्थान उन्होंने तप के लिए चुना, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे स्थान पर कभी हम एक दिन भी रह सकते। तो वहां ऐसे स्थान पर वाणी आ रही है, और वो सीधी ईश्वर की आवाज, वो हमारे लिए मार्गदर्शन है, हमारा विज्ञान वो वाणी समझा रही है। तो वाणी हमारे लिए क्या कह रही है, ये इस समय का जो विषय है, मानव जन्म और पुनर्जन्म, यहां से वो चीज समझ में आएगी। वाणी कह रही है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म, मैं मनुष्य हूं, मैं प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानता, प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी मेरे अंदर ही निवास कर रहे हैं, जिस तरह महाराज जी के अंदर निवास करते थे, भगत जी के अंदर निवास करते थे, उस तरह मेरे अंदर भी निवास कर रहे हैं, और मेरे लिए ही वो वाणी गुरु के द्वारा, गुरु के मुख द्वारा बोलकर लिखवा रहे हैं। तो आज मुझको मौका मिला है उसको सुनने का, उसको समझने का, तो मेरे लिए प्रभु क्या कह रहे हैं, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का, ये काम मनुष्य जन्म का, कि तू कहां से आया, इसका मतलब तुम्हें अपना पास्ट विचार करना है, अपना भूतकाल विचार करना है, वर्तमान जन्म ये मेरा प्रेजेंट है, वर्तमान काल है, तो मैं जब आया हूं तो कुछ साथ लेकर आया हूं, और मैं समझता भी हूं, मेरे घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं, साल दो साल के तीन साल के हो जाते हैं, मैं देखता हूं कि मेरे ही दो बच्चे हैं, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है। एक बालक अपने खिलौने को बड़े संभाल के रखता है, दूसरा बालक जैसे ही हाथ में आएगा तोड़ देगा या फेंक देगा, या खेलेगा तो एक बार खेलेगा, दोबारा खेलेगा ही नहीं। एक बालक बड़ी शांति से रहता है, भूख लगती है तभी रोता नहीं, मां समझ जाती है इसको भूख लगी। दूसरा बालक पेट भरा है तब भी रोता। तो ये स्वभाव का परिवर्तन सब कुछ कहते हैं, इतना पास्ट है, तू पहले भी था, और जैसा स्वभाव तूने वहां बनाया था वही स्वभाव तुझको अब ये बचपन से ही मिला हुआ है, मन बुद्धि के रूप में। वो स्वभाव कहाँ रहता है? मन बुद्धि में रहता है, और मन बुद्धि वही आ रही है वहां से, मन बुद्धि को कोई जला नहीं सकता। इसीलिए इस सिद्धांत है सारे गीता में कहा गया वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी ग्रहणाती नरोपराणी, अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है उसी प्रकार ये जीव या जीवात्मा या जिसको यहां नर कहा गया वाणी, तो ये जीव अपनी पुरानी देह को त्याग कर नई धारण कर लेता है और साथ में लाता क्या है, देखो ये मेरी विद्या है मैं कहां से सीखूंगा, लोगों का तो भरोसा नहीं, पता नहीं ठीक बताएंगे या गलत बताएंगे, डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी अलग अलग तरह का डायग्नोस कर लेते, बीमारी है कि है? चार डॉक्टरों ने दिखाई है, चार डायग्नोसिस आपके सामने होंगे, सबकी अलग अलग खोज होगी, अलग अलग दवा लिख देंगे, लेकिन जो प्रभु है वो एक ही बीमारी बताएंगे, एक ही इलाज बताएंगे, वहां अनिश्चित की हालत नहीं है, हर चीज निश्चित है वहां। तो गीता में क्या कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमे वैति कौनते सदा तद भाव भाविता, मनुष्य जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस देह का त्याग करता है उसी उसी भाव से भावित हुआ उसको नई देह प्राप्त करते। अब बताइए जीवन भर मैंने जो स्वभाव बनाया जो आदतें बनाई तो उस स्वभाव के अनुसार ही मरते वक्त आप कुछ सोच नहीं सकते, उस समय बुद्धि काम नहीं करती, जैसा भी आपका स्वभाव है जैसे आपके संस्कार है ऑटोमेटिकली उसमें से उसके अनुसार विचार उठेंगे आप। तो कहते हैं जिस भाव से भावित हुआ वो देह का त्याग करता है उसी भाव से भावित हुआ उसको नया शरीर प्राप्त होता है, यही वाणी में भी आता है कर्म गति अपार है जीव नहीं छूटन पाए मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाज, कामना एक डिजायर नहीं जैसे लोग अर्थ किया करते हैं कि मेरे पूर्व जन्म में कोई बच्चा नहीं था घर के अंदर, मेरी कामना थी उसको बच्चा होता तो मेरा जन्म सफल हो जाता, इसका मतलब अगले जन्म में बच्चा मिल जाएगा ये कामना पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये पूरे जन्म का विज्ञान है, जैसे जैसे तुमने संस्कार बनाए हैं जैसा जैसा तुमने स्वभाव बनाया है उसका भी पूरा विज्ञान है, उसके अनुसार ही तेरे मन के अंदर वो सारी बैकग्राउंड तैयार होती है अगले जन्म, वो वासना लेकर तू वहां से त्याग करता है और उसी के अनुसार तुझको नया प्रारब्ध और नया जन्म दिया जाता है। तो स्वभाव और प्रारब्ध तूने पूर्व जन्म में तैयार किया है, मरते वक्त जो कुछ भी तेरे साथ था वो तुझको प्राप्त हो जाता है, क्यों प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं वही चीज जो बच गई वहां पर साथ लेकर आया, कौन सी चीज, गीता कह रही है ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी प्रश्न, कहते हैं कि इस जीव लोक में अर्थात संसार में जो ये जीव है जीव भूता, मैं जीव हूं ना, जीव किसे कहते हैं जो जानता है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर होश है मुझे पता है मैं जानता हूं, इसी का नाम बुद्धि भी है इसी का नाम जीव भी है, तो कहीं उसका प्रयोग बुद्धि के रूप में होता है कहीं जीव के रूप में होता है, तो जहां जीव के रूप में होता है वहां इसकी दो चीजें होती है इसके अंदर, क्या ये जानता मैं बुद्धि है जानती भी है और निर्णय भी करती है, मन के अंदर कोई इच्छा उठ गई मेरे कोई संकल्प उठ गया किसी बच्चे के अंदर मन में इच्छा उठ गई कि भाई मैंने सिनेमा देखना, अब माता पिता से जिद कर रहा, तो माता पिता क्या सोचते हैं कि अभी तो इसका चरित्र खराब हो जाएगा देखेगा इसकी आदतें बिगड़ जाएंगी, तो बुद्धि निर्णय करती है जानती भी है और निर्णय भी करती है क्या ठीक है क्या गलत है, तो माता पिता जो बच्चे का भविष्य जानते हैं कैसे अच्छा बनेगा वो उसको उसी चीज की परमिशन देते हैं जिससे उसका भविष्य बिगड़े ना, तो उसी प्रकार प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं इसीलिए मेरे लिए बार बार अवतार लेकर आते हैं बार बार ये शास्त्र प्रकट करते हैं और मुझको फिर वो मौका देते हैं उन शास्त्रों को समझने का उन लोगों से मिलने का या उस गुरु से मिलने का जो मेरे कल्याण की सोचता है, जिसकी पूर्ण बुद्धि पूर्ण विकसित है, जहां गलती की 1% की संभावना कोई है ही नहीं। इसीलिए हर चीज का जब हर सिद्धांत का जब निर्णय किया जाता है वो केवल सत्पुरुष के वचन से सत्पुरुषों के शास्त्र से ही किया जाता है। मैं यदि कुछ कह दू उसका क्या महत्व, भले ही मैंने कितने शास्त्र पढ़े हों, कितने सत्संग किए हों, कितने अच्छे काम किए हों, लेकिन यदि निर्णय करना है तो शास्त्र को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि फेद वहां से आता है। मनुष्य तो गलती कर सकता है, कि शास्त्र लिखित है वहां गलती की कोई संभावना नहीं। इसीलिए हमने ध्यान से सुनना होता है कि मेरा जो विज्ञान है, जो शास्त्र समझा रहा है और मुझको समझने का मौका मिल रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी पता नहीं इस जन्म में मुझको दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता। इसलिए सत्संग कोई साधारण चीज नहीं होती, ये अनमोल चीज है। यदि वास्तविक सत्संग हो, शास्त्र पर आधारित सत्संग हो, सत्पुरुषों के वचनों पर आधारित सत्संग हो, और मेरे ज्ञान को ठीक प्रकार से समझाया भी जाए, तो वो सत्संग बेशकीमती होता है हर व्यक्ति के लिए। क्योंकि सारे मनुष्य जो भी संसार में आए हैं उनका लक्ष्य प्रभु ने एक ही निर्धारित किया, कि तू बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें तो परेशान रहता है, सुखी दुखी रहता है, बेचैन रहता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी मरने का भय तुझे सताता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। इतनी बाधाएं हैं कि शायद आप लिस्ट बनाओ तो आपकी कॉपी भर जाएगी, लिस्ट पूरी नहीं होगी। तो ऐसे जन्म को समझने का मुझको मौका मिला है, तो मैं ना क्यों उसको ठीक प्रकार से समझू। तो कहते हैं कि अब जब मैं आता हूं पूर्व जन्म से नए जन्म में, अर्थात पुराने शरीर से आकर नए धारण करता हूं, तो मैं लाता क्या क्या साथ है। तो कहते हैं कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी प्रश्न। अब कहते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कहते हैं जीव यानी मैं, इसको बुद्धि भी कहते हैं, जीव मेरा सनातन अंश है। सनातन का मतलब परमानेंट, इसका मतलब जीव और ईश्वर कभी अलग हो ही नहीं सकते। और इस चीज को जगतगुरु शंकराचार्य जो उन्होंने इस गीता पर भाष्य लिखा, वहां वो समझा रहे हैं इस बात को, डिटेल समझा रहे हैं इस बात को। वो कहते हैं ऐसे समझो इस बात को जैसे घर के आंगन में कोई बड़ा थाल रखा हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है, ऊपर सूर्य चमक रहा है, तो आप क्या देखते हो कि पानी के अंदर सूर्य दिखाई पड़ रहा है। पानी के अंदर हम सब देखते हैं कि सूर्य दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि वो पानी धीरे धीरे सूख जाए तो क्या होगा, क्या फिर वहां सूर्य दिखाई पड़ेगा उसके अंदर। तो वो कहते हैं क्या हुआ क्या, बोले जहां से किरण आई थी, जहां से वो अंश सूर्य का आया था, वही वापस लौट गया। उसी प्रकार यदि मेरे अंदर, मेरे मन के अंदर मैं ऐसा मेथड अपनाऊं शास्त्रों के अनुसार कि मेरी वासना शून्य हो जाए, निर्वास हो जाऊं, जिसके लिए सत्पुरुषों का मार्गदर्शन होता है, तो मेरी वासना जब शून्य हो जाएगी तब वो मेरी वासना उसी पानी की तरह से है जो वाष्प बन गया, तो अंश जो था सूर्य का वो सूर्य के साथ एक हो गया। उसी प्रकार मैं अंतर्यामी ईश्वर के साथ एक हो जाता हूं, जो ये अंश है जो भटकता रहता है वो मेरी भटकन समाप्त हो जाती है, ईश्वर के साथ में एक हो जाता हूं। इसका मतलब जीव की मंजिल ईश्वर है, और वो कहीं सातवें आसन पर नहीं है, इस देह के अंदर ही है। मां जी कहते थे वाणी में आता है, नाम कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना। मेरे जो नाभि चक्र है यहाँ तक गर्भ के अंदर बच्चे का पालन होता, सारा बच्चे का पालन नाभि से होता। ये प्रभु के का निवास स्थान है, इस निवास स्थान का अनुभव मैं कर सकता हूँ, उस भगवान का अनुभव यहाँ कर सकता हूँ यदि मैं गुरु की बात मानकर उसके दिए हुए मंत्र का मैं उसके मेथड से जो उसने कहा है उसे जाप करूं, या जो भी उसका सही मेथड है। जानते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ दो ही मेथड होते हैं, या तो शास्त्र के साथ जाप करने का जिसके लिए गुरु दिशा लेनी ही पड़ती है कंपल्सरी, उसके बिना व्यक्ति उसका अधिकारी ही नहीं। दूसरा मेथड होता है मंत्र जाप का, जो जैसे जानते हैं कि कोई कहता है ओम नमः शिवाय, वो भी है, गायत्री मंत्र भी है, और महाराज जी ने ये महामंत्र प्रकट किया ये भी है, तो वो मौन होकर जाप किया। तो मंत्र शक्ति से फिर आपके संस्कार शुद्ध होते हैं और संयम से आपकी वासना शुद्ध होती है, तो फिर आपके अंदर ये वो कैपेसिटी आ जाती है, प्रभु आप पर कृपा करते हैं कि अपना द्वार आपके लिए खोल देते हैं, उसको कहते हैं कि नाभिका जागरण, नाभिका। तो फिर ये सारे जो छह चक्र हैं ये धीरे धीरे पालते हैं, आपका अनुभव आगे बढ़ता रहता है, और प्रभु जहां खुद विराजमान है उसको दसवां द्वार कहते हैं। तो कपाल है हमारा ये वो स्थान है जहां प्रभु खुद विराजमान है और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वासना के चक्कर को छोड़ना, तरह तरह से समझा रहे, जितनी जल्दी तू वासना को छोड़ देगा मेरे पास आ जाएगा, ना तेरा जन्म है फिर ना तेरी मौत है, तेरी इटर्नल लाइफ है, यहां केवल आनंद है और आनंद के अलावा कुछ नहीं। और बताइए मेरी बेशकीमती देह तो कैसे बर्बाद करता हूं संसार में, कैसे लड़ता हूं घर में अपने ही लोगों से लड़ता, जो प्रेम करने के लिए सेवा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो मैं वासना के कारण लड़ता हूं घर से बाहर निकाल देता हूं, तो मेरी क्या दुर्दशा है। इस वासना ने संसार सारा वासना के विकास में लगा, जिस देश का देख लो आप, एक ही प्रोग्राम है कि हाई बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट तैयार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाए, ताकि सारे देशों का पैसा मेरे देश में आ जाए, तो क्या करोगे तुम, अपने देश के लोगों को भोग विलास तो सिखाओगे, तो भोग विलास सिखाओगे तो क्या होगा, आपके मन के अंदर पांच विकार बढ़ जाएंगे, क्योंकि विज्ञान है आपका एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बढ़ जाएंगे। जब ये विकार बढ़ जाएंगे, उनको विकार को शांत करने के लिए, वो इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है साधन नहीं है तो क्या करोगे, फिर जबरदस्ती करोगे दूसरों के साथ में, या धोखा दोगे किसी को, या बेईमानी करोगे, तो आप भाई हुक और क्रूर अपनी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहोगे, क्योंकि वो आपको बेचैन कर रही है और बेचैनी आपसे सहन नहीं हो रही। इसीलिए जो सांसारिक जीवन है, जो हम लक्ष्य लेके चलते हैं हाईएस्ट एजुकेशन एंड मैक्सिमम मनी, बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दो, खुद भी वही ग्रहण करो और ज्यादा से ज्यादा उसका फिर उससे पैसा कमाओ, इसके अलावा क्या गोल होता है संसार में, चाहे पूरा देश ले लो, चाहे पूरा शहर ले लो, चाहे एक ग्रह से अपना घर ले लो, एक ही हमको पता है वे ऑफ लाइफ, इसके पीछे सब पड़े रहते हैं और देख रहे हैं संसार। एक इंग्लैंड था जिसने पूरे विश्व पर राज किया, अमरीका पर भी राज किया, कहां इंग्लैंड कहां अमेरिका, उस समय हवाई जहाज नहीं होते थे, पानी के शिप तो होते थे, वहां से वो चली आती थी सेना उनकी और अमेरिका को अपने कब्जे में कर रखा, भारत को 200 साल कब्जे में रखा, और भारत की क्या दुर्दशा कर गए ये पढ़े लिखे लोग। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इतने पढ़े लिखे लोग, सांसारिक समझ के अनुसार इतने ज्ञानी लोग, उन्होंने भारत की जनता का यह हल कर दिया कि बंगाल के में जब अकाल पड़ा तो लाखों लोग मारे गए, उनके जमाने खाने तक को नहीं उनके पास, तो आप कहोगे ये इंसान है या राक्षस है। लेकिन आप चाहते हो मेरे बच्चे इंग्लैंड जाएं पढ़ें, आप अपना ईगो बढ़ाते हो उनके द्वारा, बड़ा पैसा कमा के लाएंगे, लेकिन कभी देखते नहीं इन लोगों का हाल क्या है। आज अमेरिका का हाल देख लो, एक प्रेसिडेंट नहीं है पूरे अमेरिका में खड़ा करने के लिए कैंडिडेट, एक ट्रंप बचे, एक बाइडन बचे, बाइडेन का आगे प्रेस की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो पूछ रहे थे उनसे कि आप तो भूल जाते हैं फिर आप राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए क्यों खड़े हो गए, बात कर रहे हैं वो उनके सामने भूल गए इतनी बातें। तो ऐसे व्यक्ति को जो पता है कि ये व्यक्ति तो भूल जाता है, तो देश को कैसे मैनेज करेगा, कैसे संभालेगा। तो ट्रंप का देख लिया, उसको जेल भी हो गई, उसमें केस भी चल रहे हैं, तो प्रूफ है कि हाँ भ्रष्टाचारी आदमी है, उनका प्रूफ है, मैं ये बात नहीं कह रहा। तो अब एक अच्छा व्यक्ति नहीं है उनके पास प्रेसिडेंटशिप के लिए, किस अमेरिका की नकल करने जा रहे हैं, कहां खाब देख रहे हैं, बच्चे हमारे वहां चले जाएंगे, एक ही खाब है, वहां जाएंगे कुछ पैसा कमा के ले आएंगे, वो भी सुखी हो जाएंगे, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। और इंग्लैंड का भी हाल देख लो, उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है खड़ा करने के लिए, भारत के व्यक्ति को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना रखा। तो ये दुनिया की हाईएस्ट अथॉरिटी कहां पहुंच गई, क्या हो गया हमको, भारत अभी भी क्यों बचा हुआ है। अरे कम से कम एक मोदी तो मिल गया भारत को, जो गरीबों के गरीबी के बारे में सोचता है, उनके मकान की सोचता है, उनके खाने पीने की सोचता है। तो भारत को भी देखो कोशिश ही कर रहा है आपने, एक एक जो कोशिश कर सकता है वो कर रहा है। तो भारत की भूमि आज भी ऐसी है कि यहां पर ऐसे लोग मिल जाते हैं, दुनिया तो खाली पड़ी हुई है। चाइना देख लो आप, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी एजुकेशन है, लेकिन नजर कैसी है उसकी। जितने छोटे छोटे देश हैं उनको कर्ज देके अपने वश में कर लेता है, अपनी सेना वहां लगा देता है। तो शोषण, मेरे पास पावर है, मेरे पास अकल है, तो दूसरों का शोषण, ये मेरी वे ऑफ लाइफ। तो सारी दुनिया का नक्शा देखो, यही हाल आपको नजर आएगा। भारत वो देश है जहां आज भी अध्यात्म बचा हुआ है। महा जी कहते थे प्रेमी कि भारत की धरती की शिफ्ट है, ये गुण है यहां का, यहां पर कोई ना कोई लाल पैदा होता रहता है। लाल का मतलब है सत्पुरुष, जिसकी बुद्धि 100% होश में होती है और जिसका मार्गदर्शन हमारी बुद्धि को भी होश में लाता है, ये भारत भूमि। तो ऐसे देश में पैदा होकर मैं अपने शास्त्रों के निर्णय को जानता ही नहीं, मैंने करा क्या है, कौन सी एजुकेशन प्राप्त की। इसलिए जो भोगवादी जीवन का नजरिया है, ये याद रखिए, ये आपके भविष्य का जहर है, जो आपको मारेगा ही, आपकी संतान को भी मारेगा, आपके समाज को भी मारेगा। इसलिए अभी भी यदि अच्छा जीवन चाहते तो होश में आ जाओ, निकल करके फैशन करके वस्तुएं ज्यादा खरीद के ज्यादा लोगों को दिखा दिखा के मतलब होश मत बनो, होश में आओ। तो होश में कोई ला सकता है तो केवल वो गुरु है जो आपके वक्त में आया है और उसकी वाणी आई है, उसका ज्ञान आया है। यदि मैं अच्छा जीवन चाहता हूं परिवार का, देश का, समाज का, तो मुझको होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय की भाषा में है, वैदिक लैंग्वेज तो आप समझ नहीं सकते। हालांकि वेद में और इस संता प्रकाश ग्रंथ की वाणी में कोई अंतर नहीं है, इसको रेवलेशन बोलते हैं। रेवलेशन से कहते सीधी ईश्वर की आवाज है, उसको रेवलेशन बोलते हैं। तो चाहे वेद वाणी हो, चाहे ये संता प्रकाश ग्रंथ की वाणी हो, ये एक ही है, केवल भाषा का अंतर। इसलिए जब जिन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, जिन्होंने ये वाणी पढ़ी है, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे वेद पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे ये वाणी पढ़ लो, एक ही ज्ञान है, क्योंकि स्रोत उसका एक ही है जहां से वो आ रहे हैं। इसीलिए ये कोई साधारण बात नहीं होगी, हमने मनुष्य जन्म लेकर होश में जीना होता है। इसलिए मैंने पास्ट को देखना होगा, कहां से आया, मैंने विचार करना अर्थात पूर्व जन्म में क्या था। तो वर्तमान जन्म में मेरे स्वभाव में जो सिम्टम्स हैं, जैसा स्वभाव है, स्वभाव तीन तरह का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी स्वभाव उसको कहते हैं जिसके अंदर ईश्वर विश्वास होता है, पक्का ईश्वर विश्वास होता है, और जो ईश्वर मार्ग पर चलने में अपनी जो है जीवन की सफलता समझता है। याद रखिए उसका मतलब उसके स्वभाव में सतोगुण स्ट्रांग है, और दूसरा है रजोगुण। गुण तो तीनों होते हैं लेकिन स्ट्रांग एक होता है। रजोगुणी कौन होते हैं, जो आज करके हम देखते हैं शहरों के लोग, हाईएस्ट एजुकेशन और मैक्सिमम मनी, ये हमको चाहिए। इससे हमारे सारे सुख मिल जाएंगे, बड़े चैन से जिएंगे। लेकिन यदि ऐसा होता तो फिर ये अमेरिका इंग्लैंड ये तरसते नहीं, ये सब तरसते हैं कि एक मोदी जैसा हमको भी मिल जाए, ये पूरे देश में नहीं है ब्लैकनेस, वो करेक्टर ही नहीं बचा। इसीलिए वो करेक्टर तो मैं खुद बन सकता हूं, मेरा परिवार बन सकता है, लेकिन वे ऑफ लाइफ भी तो वही अडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको, तभी तो बनोगे। इसीलिए मनुष्य जन्म लेकर तेरी प्रगति क्या थी, यदि तू तमोगुणी है, पाप करने वाला है, दूसरों को कष्ट देने वाला है, तमोगुणी जीव के लक्षण है, तो तूने उससे ऊपर उठना है, तुझे लूट कर नहीं खाना है, अपना पुरुषार्थ कर पैसे कमाना है, खाना है दूसरों, वो भी ईमानदारी से। और यदि तेरी इच्छा पूरी कर भी लेता है पैसा ज्यादा कमा के, तो ये तेरा रजोगुण प्रधान है तेरे अंदर। लेकिन ये भी मां जी कह रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं संत रविदास में, कि रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। यदि तूने पैसा कमा भी लिया मेहनत करके, भोग विलास कर भी दिया, अपनी इच्छा पूरी कर भी ली, उसको पता नहीं है क्या होगा तेरे साथ, तेरे पांच अवगुण में वृद्धि हो जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह। जब अवगुणों में वृद्धि होगी तो तेरी बुद्धि का पतन हो जाएगा, इसलिए रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए तुम, रजोगुण ये आज मैं हूं तो मुझको सतपुरुषों का प्रोग्राम सीखना चाहिए, जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। तो अध्यात्म विद्या जब सीखता हूं तब मुझको वो चीज नजर आती है, वो सीख जो मिलती है, जो मुझको ईश्वर की ओर ले जाती है। याद रखिए आपके अंदर भी ईश्वर विश्वास है, तो पाप करने से आप डरोगे नहीं डरोगे, झूठ बोलने से आप डरोगे नहीं डरोगे, आपको पता है जो मैंने गलती कर भी दी तो प्रभु मुझे छुड़ा जाए, उस कर्म का फल मुझको भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे वो कभी कट ही नहीं सकते। तो आप किसी वहम में नहीं पड़ोगे, तो आपको ये भय आपको ईमानदार बना दे, यही भय आपको ईश्वर भक्त भी बना दे, क्योंकि जब ईश्वर के बिना काम ही नहीं चलता, कर्म का फल वो देने वाला है, तो फिर आप ईश्वर पर विश्वास करने लगते हो, और जब शास्त्र पढ़ते हो, सत्संग श्रवण करते हो, तो उनकी बातें आपको समझ में आने लगती है। तो वाणी क्या कह रही है समझदार मनुष्य के लिए, मानुष जन्म सफल हो गए जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने यह दुर्लभ जीवन, मानव जन्म साधारण जन्म नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्धि मिली हुई है, और पूरी सृष्टि में और दूसरा कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके पास बुद्धि हो, बुद्धि केवल मानव के पास, चेतना तो सबके अंदर है, ये हर जीव जानता है, लेकिन निर्णय नहीं कर सकती बुद्धि, क्योंकि बुद्धि नहीं है, मेरी बुद्धि निर्णय कर सकती है। निर्णय कौन सा, जो शास्त्र निर्णय हमको सिखाना चाह रहा है वो निर्णय। इसीलिए सत्संग जो है वो जरूरी चीज, श्री महाजी ने ठीक ही कहा, पहले जिस जगह सत्संग नहीं, सत्संग का समाचार नहीं, वो स्थान वो लोग एक दिन तबाह हो जाएंगे। जिसके पास सतबुद्धि ही नहीं है वो ठीक निर्णय कैसे बुद्धि करेगी, दूसरे देश के लोगों को लूटोगे, तुम्हारे पास शक्ति आ गई, पैसा बढ़ गया, आज शस्त्र बढ़ गए आपके, तो क्या करोगे आप, पड़ोसी देश है छोटे मोटे उन पर कब्जा करना, ये तो करोगे क्योंकि आपको सुख चाहिए, आप ये भूल जाओगे बेचारे गरीब देश है उनको, उन्हीं को लूट रहा हूं मैंने, उनकी सेवा करनी थी, उनका दुख मुझे दिखाई पड़ना चाहिए था। अब बताइए जितने भी राक्षस लोग हैं, यूं कही जैसे रावण राजी भी था, क्या करा उसका, तो पता राम जैसे व्यक्ति को भी परेशान किया उसने, ये रावण बुद्धि है, ये भोग बुद्धि है, ये कभी तृप्त नहीं होती। कहते हैं सोने की लंका थी, बड़ा सिद्धियों वाला मालिक था वो, बड़ा शिव भक्त भी था वो, लेकिन बुद्धि का निर्णय कहां था, वही भोगवादी जीवन। इसीलिए मेरी भी यदि बुद्धि ऐसी ही बनी रही तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, कोई बचाने वाला मुझको नहीं हुआ याद रखे। इसलिए अभी भी समय मैं चेत जाऊं, माजी ने इसलिए पांच नियम दिए आपको छोटे रूप में समझने के, सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण। और सत्सिमरण के बारे में क्या लिखा महाराज जी ने, वो कहते हैं सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, सब कर्मों से जो कुछ भी मैं करता हूं 24 घंटे के, सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, कि जो प्रभु उपासना करेगा उसी के अंदर प्रभु का विश्वास बना रहेगा, नहीं तो भावी चला क्या करेगा। कह रहा मैं एक बार जाऊंगा देवी दर्शन करने, प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैंने जो कुछ भी पाप किए देवी माफ कर दूंगा, ऐसी कल्पना बनाता रहूंगा और बड़े बड़े पाप करता रहूंगा क्योंकि मेरे तो विश्वास आ गया, तो माफ कर दे। याद रखिए, एक भी तेरा पाप माफ नहीं किया जाता और तेरा एक भी पुण्य जो तूने किया है वो बिना फल दिए हुए नष्ट नहीं होगा। तो प्रभु सबका हिसाब किताब एक साथ ही रख लेते हैं। मैं तो एक ही चीज का सोच करता हूं, प्रभु क्या ऑटोमेटिक हिसाब करता है क्योंकि वो अंतर्यामी, मेरी मन बुद्धि के मालिक वो है, वो अंतर्यामी लेवल है मुझे। मैं क्योंकि सिमरन नहीं करता, प्रभु की याद नहीं करता, इसलिए मेरा प्रभु से कोई संबंध नहीं है। संसार की याद करता हूं, संसार का उपयोग करता हूं, मेरा सारा संसारियों से संबंध है, संसार की वस्तुओं से संबंध है। अंतर्यामी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस ब्रह्मांड की, उससे मेरा संबंध ही कोई नहीं है, वो अंतर्यामी। इसीलिए सबसे पहले दिन निकलता है तो मैंने क्या करना होता है, प्रभु की याद करनी। सबसे पहला काम, संसार का काम शुरू करने से पहले मैंने अपना वो सबसे महत्वपूर्ण काम पहले पूरा कर लेना। इसलिए मान कर महाजी कहते हैं प्रेमी, क्या सारे शास कहते हैं, पुराण बुजुर्ग भी यही कहते हैं, सबसे पहले सुबह उठ के प्रभु की याद। प्रभु की याद करने से क्या होता है, तेरी बुद्धि होश में आ जाती है। मैंने किसी को धोखा नहीं देना, मैंने पाप को नहीं करना। प्रभु की याद करने वाला जो प्रभु से मिलने के लिए याद करता है उसकी, वो पाप नहीं करता, हिम्मत ही नहीं होती उसके। इसीलिए मैंने मानव जन्म जो व्यतीत करना है किस रूप में करना है, मुझको पता है मेरे अंदर तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो मैंने धीरे धीरे करके सतोगुण को का विकास करना, और वो तभी विकास होता है उसका जब मेरा जो पूर्ण गुरु है, जिसको मैंने अपने आदर्श पुरुष जीवन में धारण किया, उसका जो मार्गदर्शन है, मैंने उस मार्गदर्शन के अनुसार अपनी दैनिक क्रियाएं करनी है, संसार के काम भी करने हैं, और प्रभु का रास्ता भी मैंने तय करना है। मैंने स्वार्थी नहीं बनना, जो कुछ भी मेरी सामर्थ्य है मैंने, चाहे घर में हूं चाहे बाहर हूं, मेरे में जो सामर्थ्य है मैंने दूसरे की मदद करने की कोशिश करनी है, अर्थात मुझको दूसरे का दुख दिखाई पड़ना चाहिए, चाहे मैं समाज में हूं चाहे मैं घर में। तो जिसकी वे ऑफ लाइफ जीने का मेथड ये बन जाता है, तो बताइए वो सबका प्रेमी खुद ही बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कौन नफरत करेगा उससे, कौन उसको अपने से दूर भगाना चाहेगा। तो जो सबका बन जाता है वो सबसे पहले तो ईश्वर का बन जाता है, क्योंकि ईश्वर अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी ईश्वर खुश होता है कि हाँ अब ये धीरे धीरे स्वार्थ से दूर हो रहा है और परमार्थी बन रहा है, अर्थात दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरों के कष्ट को दूर करने की कोशिश कर रहा है और मुझसे मिलने की कोशिश करता है, मुझको चाहता है। ये आपके अंतर्यामी प्रभु से के प्रति प्रेम पैदा आपके अंदर हो जाता है। फिर आप जब स्मरण करते हो तो आपको पता लगता है कि क्या डिफरेंस आ गया, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता था, पापी जीवन व्यतीत करता था, तो मेरे मन की क्या हालत रहती है। अब मुझको दूसरा दुख दिखाई पड़ता है, उसकी सेवा करने की कोशिश करता हूँ, प्रभु की प्रेम से याद करता हूँ, उनके शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूँ, सत्संग सेवा करता हूँ, मेरी बुद्धि होश में रहती है। तो मानव जन्म याद रखिए कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीन चीजों से जुड़ा हुआ, पास्ट माने पूर्व जन्म, प्रेजेंट माने वर्तमान जन्म, फ्यूचर माने अगला जन्म। तो मेरा कनेक्शन तीन जन्म से लगातार है क्योंकि मेरी मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो आया रहा कर क्या करे कि मनः स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकती। जिस समय तू देह का त्याग करता है तो मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों को तू यहां से अपने साथ ले जाता है। मन भी तेरे साथ गया, बुद्धि तो खुद है ही, बुद्धि भी तेरे साथ गई और पांच ज्ञान इंद्रियां भी तेरे साथ गई। अब बताइए सारा स्वभाव, सारी इच्छाएं, सारे लक्ष्य इन्हीं के अंदर तो होते हैं, सारी क्रियाएं इन्हीं के द्वारा तो होती है, ये तेरी सब नए न्यू बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, यही तो तू है। लेकिन संसारियों के बीच में पलकर मेरा गुरु कोई नहीं, गुरु है भी तो नकली गुरु है। सत्संग सुन लेता हूं, पता ही लोग मुझे कथा बातें क्या क्या बहकाते रहते, शास्त्र पढ़ो, सत्पुरुषों की बात पढ़ो, उससे संबंध स्थापित करो, उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। नहीं कोई मिला तो सत्पुरुष की जीवनी पढ़ो। सत्पुरुष कभी नहीं मरता क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी प्रभु है, वो बाहर आया था। इसीलिए चाहे आज आप हो चाहे 20 साल पहले थे आप, याद रखिए गुरु कभी नहीं मरता। जो जैसे माता भगतराम जी है, चाहे रामकृष्ण परमहंस है, चाहे महेश्वरानंद है, कोई भी गुरु है, जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण ऋषि है, वो खुद ईश्वर है। इसलिए महेश शर्मा कहते थे गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है, वो अंतर्यामी है। श्री मां जी कहते थे प्रेमी सदगुरु तो अंतर्गमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होए के तो घटका पाठ होगा। आज्ञाकारी क्या होना है? इस वाणी के अनुसार मैं अपनी बुद्धि के निर्णय को बदलू और अपने जीवन का प्रभाव उसी प्रकार से बनाऊ, दैनिक जीवन का प्रभाव जिस प्रकार से गुरु गाइड कर रहा है, तब मेरा मानव जीवन सफल होगा और अगला जन्म मिलेगा भी तो इससे बेटर कंडीशन ही मिलेगा। वहां प्रभु जो प्रेम बचपन से ही होगा, परोपकारी भावना बचपन से ही होगी, तो अगला जीवन मेरा चैन का बीतेगा, मैं दूसरे के लिए जिएगा और प्रभु की याद के लिए जिएगा, तो खुद तो परेशान होगा ही नहीं। इसलिए वो अमृत है, इसकी कमाई करके यहाँ से जुड़ा हूँ ताकि हमारे मानव जीवन सफल। ओम नमः।